नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आकाशवाणी गोल्ड का कार्यक्रम आज सवेरे। रोजाना की तरह आज भी हम तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर आ गए हैं आपके पास। इसके अलावा इतिहास की भी होगी बात और जानेंगे कि आज का दिन खास क्यों है। साथ ही आज कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों को भी हम याद करेंगे। और इसी के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूँ सर फिरोजी और मेरे साथ है शगुन चोपड़ा। गुड मॉर्निंग शगुन।
गुड मॉर्निंग सर फिरोजी, हार्ट फेल्ट हेलो, नमस्कार एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे टुडे विद मी एंड सर फिरोजी। एंड वेल सर फिरोजी, मॉर्निंग इट जनरली रेफर्स टू द टाइम पीरियड फ्रॉम सनराइज टू नून एंड ऑल्सो द टाइम फॉर आवर प्रोग्राम आज सवेरे।
जी बिल्कुल। तो
एज सर फिरोजी सेड, वील गिव यू द न्यूज, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, ऑल्सो वील बी प्रोवाइडिंग यू मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड टूडे वील ऑल्सो बी एक्सप्लोरिंग टूडेज हिस्ट्री एंड टूडे लिसनर्स इट्स 8th of August। लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस।
जी बिल्कुल शगुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने अपनी ब्राजील यात्रा का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने बातचीत के क्रम में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल कॉल्ड ऑन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुटिन एट द क्रेमलिन इन मॉस्को यस्टरडे। अर्लियर इन द डे मिस्टर डोभाल हेल्ड टॉक्स विद रशियन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी सर्गे शोइगु। Speaking on the occasion, the National Security Advisor said, India has a special and long relationship with Russia and it values this relationship. He said both sides had high-level engagement and these engagements have contributed very substantially. The NSA also said Russian President Vladimir Putin will visit India soon and the dates are almost finalized. However, no specific date or timeline has been indicated about the visit.
We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. These summit meetings have always been the watershed points. They have always given a new direction to our relations. So I do hope that our this meeting at this point of time will give us some new ideas.
निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक आयोग ने इन आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि अगर श्री गांधी को लगता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वही सही है तो उन्हें चुनाव नियमों के अनुसार घोषणा पत्र या शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता को अपनी बातों पर विश्वास नहीं है तो उन्हें बेतुके निष्कर्ष निकालना और देशवासियों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए।
The Northern Railway has opened Anantnag Railway Station in the Kashmir Valley for transport of goods. In a statement, Railway said, as a major step towards promoting economic activities in the Kashmir Valley, Northern Railway has officially opened the Anantnag Railway Station for the movement of goods. With this decision, Anantnag is now equipped to handle the commodity, which will provide a new and efficient transport option for businesses across Kashmir. The station will operate daily from 6 a.m. to 10 p.m. and will carry out all types of goods except petroleum products through railway tracks. It is an important milestone in the ongoing development of Baramulla-Srinagar-Banihal railway corridor, which is a part of the Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link project. The key benefits of the decision would be better market access to Kashmir products such as horticulture, handicrafts and fresh produce. Low transportation costs for local businesses and traders and better logistics and fast delivery, especially during winter, will help local businessmen and farmers. These developments are expected to change the dynamics of logistics and business for the entire region. Local industry bodies and residents have welcomed the move and described it as a timely and transformative step for the economic development of Kashmir.
भारत में इस वर्ष जनवरी से अप्रैल के बीच चिकित्सा प्रयोजनों के लिए 1,31,000 से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन एफटीए दर्ज किया गया है। ये इस अवधि के दौरान कुल एफटीए का लगभग 4.1% है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में बांग्लादेश चिकित्सा पर्यटकों के क्षेत्र में शीर्ष केंद्र के रूप में उभरा है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार चिकित्सा पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी हील इन इंडिया अभियान को बढ़ावा दे रहा है और चिकित्सा पर्यटन तंत्र को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र भागीदारी को बढ़ावा भी दे रहा है।
Union Home Minister Amit Shah and Bihar Chief Minister Nitish Kumar will today inaugurate the construction work of a grand temple dedicated to Goddess Sita at Punora Dham in Sitamarhi district of Bihar. The foundation stone laying ceremony and Bhumi Pujan for the grand temple will take place this afternoon amidst chanting of Vedic mantra. On this occasion, the Union Home Minister Amit Shah will also address a public gathering. The foundation stone will be laid under the supervision of scholars and purohits from Banaras and Mithila. An estimated 883 crore rupees will be spent on the temple. The Bihar government has decided to acquire 50 acres of land for the construction of the new temple. Union Home Minister will also flag off Sitamani New Delhi Amrit Bharat Express train via video conferencing from Sitamani. This will provide a direct trail link via several important places of Bihar. This will also be saints and there will also be saints and seers from across the country, including Ayodhya, Kashi, Janakpur and South India, who have arrived to participate in today's event. For the Bhumi Pujan, soil from 21 pilgrimage sites and water from 31 rivers have been brought. Now, listeners, we'll give you the news from the world of sports and we are bringing the latest from boxing, chess, football and rugby. Listen in.
India's medal tally at the Under-19 Asian Boxing Championship rose to 12 after 5 male pugilists powered their way into the semi-finals with impressive victories in their respective weight categories in Bangkok. Joining their 7 female counterparts who had already made the last 4, Shivam 55kg, Mossam Suhag 65kg, Rahul Kundu 75kg, Gaurav 85kg and Hemant Sangwan 90kg delivered dominant performances to seal their spots in the semi-finals and guarantee at least bronze medals. The Under-22 Asian Boxing Championships are being held simultaneously and India is also assured of 13 medals in the Under-22 category with 5 boxers already in the gold medal bouts. In chess, world number 5 Arjun Erigesi and German Grandmaster Vincent Kiemer got off to a winning start at the Quanbox Chennai Grandmasters 2025 as the prestigious classical tournament began yesterday at the Hyatt Regency Chennai. Among the most anticipated contests was the All Chennai face-off between local Grandmasters Pranav V and Karthikeyan Murali, which ended in a well-fought draw. The top board clash between former world number 6 Anish Giri and American GM Ray Robson also ended level, as did the duel between India's Vidit Gujarati and Dutch GM Joran van Forest. In football, Mohammedan SC concluded their Durand Cup journey in style, defeating BSF FT 3-0 with dominant play at Kishore Bharti Krirangan in Kolkata today. In another match, Naroka FC and Indian Navy FT played out a hard-fought goalless draw in their Group F match at the Kumaran Lampak Main Stadium in Imphal. The Asia Rugby Under-20 Championship will be held in Rajgir, Bihar on the 9th and 10th of this month. 8 men's and women's team each from the top rugby-playing countries of Asia will participate in the tournament. As each team comprises 7 players, this event is known as Rugby Sevens. The formal inauguration of the championship will be held today at Rajgir. Jigyasa Pandey, Akashwari News, Delhi.
श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब आपको देंगे महानगरों का हाल। शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से, जिनके बारे में जानकारी देंगी शगुन।
And the first metro city update is from Chennai. The Indian Institute of Technology, Madras, has launched a School of Innovation and Entrepreneurship to create a world-class ecosystem to establish deep tech startups. The objective is to put the institute on the global map of entrepreneurial universities. IIT has over 475 startups valued in excess of 50,000 crore rupees under the aegis of Incubation Cell, together with several sector-specific incubators as well. These startups have cumulatively created more than 11,000 jobs, filed over 700 patents, and have attracted 12,000 crore rupees in investments. Through structured curricular and academic support, the institute aims to catalyze the emergence of the next generation of deep tech startup founders, boosting the vision of Make in India and Make for the World as well. Now we are heading to Bengaluru. Prime Minister Narendra Modi will formally flag off the new Vande Bharat Express between Bengaluru and Belgavi on August 10th. This will enhance connectivity between North Karnataka and the state capital. This semi-high-speed train service will operate 6 days a week, except Wednesdays. The inaugural Vande Bharat Express will depart from KSR Bengaluru at 11:15 hours on that day. After stopping at Yeswantpur, Tumkuru, Devangare, SMM Haveri, SSS Hubli and Dharwad, and reach Belgavi at 20 hours on the same day. The regular services will commence from the next day. The train will consist of 8 coaches, including 4 motor cars, 1 trailer car, also 1 executive class trailer car and 2 driving trailer cars here. It is equipped with world-class amenities for an enhanced travel experience, so it's very good, you know, to look forward to.
Ji.
Very good for the passengers, right? Now we are going to Hyderabad. Heavy rain lashed several parts in Hyderabad. This happened last evening, leading to waterlogging on the roads and massive traffic snarls at various places in the city. As per the Telangana Development Planning Society data, Sirilingampally area received over 140 millimetre of rainfall, while Sarur Nagar in Hyderabad city, it limits the received 129 millimetre. The city's disaster management personnel and traffic police took steps to clear the water from the roads. Traffic moved at a snail's pace at many places in the city, of course, because of waterlogging on the roads. Chief Minister A. Revanth Reddy, who is camping in Delhi, asked officials to be alert in view of the heavy rain in Hyderabad and other places also in the state. He spoke to senior officials, including Chief Secretary K. Ramakrishna Rao, DGP Dr. Jitendra, and asked them to keep the disaster response teams ready for deployment. The authorities urged the Hyderabad residents to avoid travelling unless urgent. So listeners, if you're listening to us from Hyderabad, be very careful and vigilant as well. So these were the updates from Chennai, Bengaluru, Hyderabad. Now over to you, Safirozi, for the updates from Delhi, Mumbai, कोलकाता.
जी बिल्कुल शगुन, सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल सुखदेव विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया. ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 7,500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, पिकल बॉल, चिल्ड्रन पार्क और जॉगिंग ट्रैक आदि जैसे खेलों की सुविधाएं हैं. इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी, डीडीए उपाध्यक्ष एन सरवण कुमार और डीडीए के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और दिल्ली की ओलंपिक एसोसिएशन, विभिन्न सरकारी विद्यालयों और खेल प्रशिक्षण केंद्रों से आए बच्चों ने कल दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली में खेल और युवा मामलों के लिए अब अलग विभाग बनेगा, जिससे खिलाड़ियों को जरूरत के मुताबिक सुविधाएं मिल सकेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहली बार है कि कोई सरकार खुलकर अभिभावकों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि ये कानून बच्चों, उनके भविष्य और उनकी शिक्षा को पूरा फायदा पहुंचाएगा.
पहली बार दिल्ली के पेरेंट्स के साथ सरकार खड़ी है, उनके फायदे के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा उन्हें मिले इसके लिए हमने जो नियम बनाए, जो एक्ट बनाया, उसमें पूरे तरीके से लाभ बच्चों को मिलेगा, उनके भविष्य को मिलेगा, उनकी शिक्षा को मिलेगा, प्राइवेट स्कूल के पार्ट पे भी और सरकारी स्कूल में भी.
और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कल इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास बाढ़ की तैयारियों का जायजा लिया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वजीराबाद में जल स्तर चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंच गया है, लेकिन खतरे के निशान से नीचे है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रशासन ने कार्य शुरू कर दिया है. श्री वर्मा ने कहा कि यमुना नदी के किनारे लगभग 12,000 लोग रहते हैं और अगर पानी खतरे के निशान को पार करता है तो उन्हें वहां से निकाल लिया जाएगा.
दिल्ली में अभी पानी का लेवल बढ़ गया है, यहाँ पे अभी 204 मीटर से कम है, मगर जो अपस्ट्रीम में अगर हम देखेंगे वजीराबाद की तरफ में तो वहाँ पे अभी 204.99 लेवल पहुँच गया है, जो कि हमारे वार्निंग लेवल से ऊपर है मगर हमारे डेंजर लेवल से कम है। तो अभी से यहाँ पे मुनादी हमारे सारे प्रशासन ने करवानी शुरू कर दी है। 12,000 के करीब में लोग अभी भी हैं जो यमुना की दोनों तरफ में बैंक के ऊपर में रहते हैं, अगर ये डेंजर लेवल से ऊपर गया तो वहाँ से उन लोगों को खाली कराना शुरू करेंगे।
और अब रुख करते हैं मुंबई का। बृहन्मुंबई नगर निगम ने नारली पूर्णिमा के अवसर पर अपने सभी विद्यालयों और कार्यालयों में अवकाश की घोषणा की है। हालांकि कल जारी एक विज्ञप्ति में बीएमसी ने कहा कि आवश्यक सेवाओं को इस आदेश से बाहर रखा गया है। ये निर्णय महाराष्ट्र सरकार द्वारा नारली पूर्णिमा के अवसर पर मुंबई में सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के बाद लिया गया है। और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पनवेल नगर निगम ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। 15 अगस्त तक चलने वाला ये अभियान लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और 14 अगस्त को विभिन्न देशभक्ति गतिविधियों जैसे रैलियों, कला प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। लोगों से निर्धारित बूथों पर सेल्फी लेने और उन्हें www.harghartiranga.com पर अपलोड करने का आग्रह किया गया है। निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा मेला, बाइक रैलियां, मैराथन जैसे कई कार्यक्रमों की भी योजना बनाई है। और ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों की दृष्टिबाधित लड़कियों, आदिवासी छात्रों और महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने कल मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन को राखी बांधी। ये राखियां बांस से बनाई गई थी। राज्यपाल ने इस अवसर पर आगंतुकों से बातचीत की और उन्हें मिठाइयां और उपहार भेंट किए। और एक खबर कोलकाता से भी है। बंगाली कैलेंडर के अनुसार आज यानी शुक्रवार श्रावण मास की 22वीं तारीख है। इस दिन कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल और दुनिया भर में बंगाली लोग इस तिथि को उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज कोलकाता में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। विश्व भारती विश्वविद्यालय में अनुष्ठान और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में 6 दिवसीय समारोह की भी शुरुआत होगी। श्रोताओं, अब आपको देते चलेंगे महानगरों के मौसम की जानकारी। एक बार फिर शुरुआत राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की बात करें तो यहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बिजली कड़क सकती है। न्यूनतम तापमान के 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान के 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बौछारें या हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान के 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और शगुन, आपके पास क्या जानकारी है मौसम की महानगरों से?
यस, सिमिलर कंडीशंस फिरोजी विल प्रिवेल इन अदर मेट्रो सिटीज एज वेल।
जी,
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम इट विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। Talking about Bengaluru, it is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Please keep your umbrellas with you. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky and there is a possibility of one or two spells of rain or thunder showers here as well. The temperature will hover between minimum of 25 degrees and maximum of 32 degrees Celsius. Obviously, you can also fashion a raincoat, right?
जी, बिल्कुल। और शगुन, अब कार्यक्रम का वो हिस्सा आ गया है जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटे और देखे कि आज यानी 8 अगस्त के दिन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थी।
जी,
तो सबसे पहले बात कर रहे हैं साल 1549 की। आज ही के दिन फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इसके अलावा 1609 में आज के ही दिन वेनिस की सीनेट ने गैलीलियो द्वारा तैयार दूरबीन का निरीक्षण किया। आज ही के दिन 1763 में वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार कनाडा फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्र हुआ और 1864 में आज ही के दिन जिनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। इसके अलावा 1900 में आज ही के दिन बोस्टन में पहले डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत हुई।
नाउ इन द ईयर 1923 floods, respective floods on Ganga and Yamuna River, they cause loss of life in Banaras, Varanasi here.
और 1942 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की।
In the year 1949, India and Bhutan signed the Treaty of Perpetual Peace and Friendship. Now, in the year 1955, Dr. Homi J. Bhabha, he was elected as the chairman of the International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy. Now, in the year 1984, P.T. Usha at Los Angeles, she set record for 400 meter in women's category in 55.42.
और साल 1988 में आज ही के दिन 8 सालों तक चले संघर्ष के बाद ईरान और इराक के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई और साल 2010 में आज ही के दिन तेजस्विनी सावंत म्यूनिक में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ये उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और श्रोताओं, अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या हमसे विदा हुए। तो शगुन, आज सबसे पहले जिन्हें हम याद कर रहे हैं वो भारत के प्रसिद्ध लेखक थे। हम बात कर रहे हैं भीष्म साहनी जी की जी। इन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भीष्म साहनी मानवीय मूल्यों के सदैव हिमायती रहे। वामपंथी विचारधारा से जुड़े होने के साथ साथ ये मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे। आपाधापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग रहा। इन्हें इनके लेखन के लिए तो स्मरण किया ही जाता है, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए भी ये चिरस्मरणीय है। भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं की, जिनमें से उनके उपन्यास तमस पर वर्ष 1986 में एक फिल्म का निर्माण किया गया। और शगुन, हम अपने श्रोताओं को इस फिल्म का ही एक डायलॉग सुनाने वाले हैं।
माफ करना अम्मा, माफ करना। मेरे किए का फल तुम्हें भी भुगतना पड़ा। ऐसे भी आप आदमी पूरा क्रियाक्रम भी नसीब नहीं। मैं दरबार साहब जाके तेरे वास्ते अरदास कराऊं।
Well, listeners, you were listening to one of the creations by Bhishm Sahani, well, most famous for his novel Tamas, जी. Right? And he was awarded the Padma Bhushan for Literature in 1998 and also Sahitya Academy Fellowship in the year 2002. Well, there is an interesting thing to note here that in the year 1984, filmmaker Saeed Akhtar Mirza, he offered Sahani the lead role in Mohan Joshi Hazir Ho, and it was his, Bhishma Sahani's debut film.
और शगुन, हमने अभी तमस का एक डायलॉग सुना, लेकिन आइए अपने श्रोताओं को प्रसार भारती के अर्काइव से खुद भीष्म साहनी का एक इंटरव्यू का पोर्शन सुनाते हैं, जिसमें वो आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं।
यस,
हम कोई भी साधु घर में आ जाए तो उससे सवाल पूछते हैं, आध्यात्मिक सवाल पूछ, अपनी जिज्ञासा पूरी करते हैं। ये जिज्ञासा का जो पहलू है, ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और बहुत खूबसूरत अंग मैं समझता हूँ। दूसरे, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे उनकी परिकल्पना करने वाला विराट के दर्शन कर रहा है, समूचे ब्रह्मांड उसकी आंखों के सामने है और कहीं उसमें तंग नजरी नहीं है, पक्षपात भी नहीं है, मानव कल्याण की भावना से ओत प्रोत है। वो किसी जाति विशेष के बारे में, देश विशेष के बारे में नहीं सोचते, वो समूचे मानव जाति के बारे में सोचते हैं। वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिना, उसमें ये नहीं कहा कि मेरी जाति के लोग सुखी हों।
Now, let's talk about another writer. Well, she has been known primarily for her works of horror and mystery, very much loved by many, many people, I think, globally, Shirley Jackson. Well, she, her writing career, it spanned over 2 decades, during which she composed 6 novels, 2 memoirs, and more than 200 short stories as well. In 1959, she published The Haunting of Hill House. This is a supernatural horror novel, which is widely considered to be one of the best ghost stories ever written. Her final work, the 1962 novel, We Have Always Lived in the Castle, is a gothic mystery also. If somebody wants to read it, please go ahead. I told you two of her works, The Haunting of Hill House and also We Have Always Lived in the Castle.
आज अनुपम श्याम ओझा जी की पुण्यतिथि है. ये भारतीय फिल्म और टीवी कलाकार थे जो कि मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा और टीवी जगत में सक्रिय रहे. अनुपम श्याम ने वैसे तो कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया, लेकिन इन्हें असली सफलता मिली साल 2009 में आए टीवी धारावाहिक मन की आवाज प्रतिज्ञा से. ये टीवी सीरियल लोगों को खूब पसंद आया और खासकर अनुपम श्याम के किरदार ने लोगों के दिलों में जगह बनाई. इस धारावाहिक के बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे. अनुपम श्याम ने शक्ति, हल्ला बोल और रक्तचरित जैसी चर्चित फिल्में की. इनकी अन्य फिल्मों में दस्तक, दुश्मन, सत्या, दिल, दिल से जख्म, संघर्ष आदि शामिल हैं.
Well, listeners, today we are also remembering Bennett Lester Carter. Also, we call him Benny Carter. Well, he has been a multi-instrumentalist, saxophonist, clarinetist, trumpeter, also a composer and an arranger. Well, from the beginning of his career, he worked as an arranger, including written charts for Fletcher Henderson's big band that shaped this particular music swing style. And he had a very long career that lasted till the 1990s, and he has won very important 8 Grammy Awards. I have picked a beautiful instrumental piece. Listen in.
आज साई खोम मीराबाई चानू का जन्मदिन है. ये भारतीय वेटलिफ्टर हैं जिन्हें वर्ष 2018 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इसी के साथ मीराबाई चानू उन दो लोगों में शामिल हो गई जिन्हें वर्ष 2018 में देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 201 किलोग्राम वजन उठाकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया.
Well, listeners, let's now also talk about a physicist and a mathematician. Well, a theoretical physicist. I am talking about Paul Adrian Morris, Dirac. Well, he laid the foundations for both quantum electrodynamics and also the quantum field theory. And, well, listeners, he has graduated from the University of Bristol. And also, he has shared a Nobel Prize in Physics in the year 1933 with Erwin Schrödinger. Well, he then graduated from St. John's College, Cambridge, with a PhD in physics. This was actually in the year 1926, listeners. And he wrote the first ever thesis in quantum mechanics. And it's interesting to note that while he was doing that, while he was graduating from St. John's College, he first wrote the thesis on quantum mechanics. How wonderful, right?
जी, बिल्कुल. और आज सिद्धेश्वरी देवी जी की जयंती है. ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी. तत्कालीन समय में जब नृत्यों और गायकों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, ऐसे समय में भी सिद्धेश्वरी देवी ने अपनी कला के माध्यम से भरपूर मान और सम्मान अर्जित किया. इन्हें ठुमरी गायन की साम्राज्ञी माना जाता है. सिद्धेश्वरी देवी को पहली बार 17 साल की उम्र में सरगुजा के युवराज के विवाह उत्सव में गाने का अवसर मिला. इनकी पुत्री सविता देवी भी प्रख्यात गायिका है जिन्होंने अपनी मां की स्मृति में सिद्धेश्वरी देवी एकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्थापना की है. आइए आपको सुनाते हैं इनका गाया राग खमच.
You were listening to Siddheshwari Devi's beautiful voice, a stalwart figure in Thumri. Well, her repertoire also encompassed khayals, drupads, as she was also explaining you, Sir Firozi, dadras also, tappas, kajris, and a lot more, and also bhajans there. Listeners, today we are also remembering another musician, Glenn Travis Campbell. Well, the country musician, and also he has been an actor. He has been a revered session guitarist before breaking through as a solo performer. This is the song By the Time I Get.
She'll find the note I left hanging on her door.
श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का. सरफिरोजी और शगुन चोपड़ा को दीजिए इजाजत. कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की. आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड.
Well, listeners, thank you so much for tuning in. We hope you have a superb and wonderful day ahead.
नमस्कार.